कोई बात आप पूछना चाहें या कहना चाहें, नहीं तो कुछ चीजें मैं इसमें आपको और ऐड करूंगी। जी, इन्होंने अच्छी बात कही कि आजकल चूंकि हम लोग कुरान पढ़ रहे हैं, तो अगर हम अपने घर वालों में कोई खराबी देखें तो हमें एकदम डायरेक्ट ताना नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, बाज़ दफ़ा लोग इसको अपना अखलाकी फ़र्ज़ समझते हैं। और एक हदीस है मुस्लिम की है जो इतनी मिसकोट की जाती है, मतलब मिसकोट से मुराद ये कि उसको सही समझ नहीं पाते हम लोग, जिसमें खुलासा उसका क्या है कि जो भी तुम में से किसी बुराई को देखे तो उसको हाथ से रोके, फिर ये ना कर सके तो जुबान से रोके, और ये भी ना कर सके तो फिर दिल में बुरा जाने। बड़ी खूबसूरत रिवायत है। आप ज़रा इसी को इमेजिन कर लें, चले इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। इमेजिन करें ज़रा कि एक शख्स जो है वो कोई वल्गर चीज़ देख रहा है, आप घर में घुसे, आप इस हदीस को कैसे अप्लाई करेंगे कि पहले जाते खटक से आप वीडियो बंद कर दें। दूसरा दर्जा क्या है कि अगर ये ना करें, इस पे लड़ाई हो जाएगी, तो फिर आप वहां खड़े होकर उसको गालियां देना शुरू कर दें। हाँ, फिर तीसरा दर्जा ये है कि आप अंदर जाके रोना शुरू कर दें। ये तीन सूरत हाल है ना। यकीन करें बहुत सारे लोगों ने यही तरीका तबलीग का इख्तियार किया हुआ है। आप जरा इमेजिन करें, किसी के शौहर हैं, अल्लाह ना करे किसी के ऐसे हों या ऐसी कोई चीज़ें देखें। आपको तो गुनाहों का नशा होता है, जैसे आपको कुरान पढ़ते हुए बीच में कोई रोके तो आपको गुस्सा आता है ना, फोन भी आ जाए कोई आपको डिस्टर्ब करे तो तकलीफ होती है ना। इस तरह याद रखे कि गुनाह करने देखने सुनने वालों को भी तकलीफ होती है, वो भी इंसान है, ठीक है, उनकी सोच उल्टी हुई भी और बात है। ये मैं तो कभी ना ऐसी आपको तबलीग की दावत दूं कि जाएं और झट से आप उसको पकड़ के ख़त्म करें। हम हमेशा फौरन पैनिक होते हैं और जब वो वक्त टल जाता है तो भूल ही जाते हैं। मसलन चलें शौहर की बात तो शायद ज़रा थोड़ी ज़्यादा ही सेंसिटिव हो सकती है, अपने बच्चों पे आ जाए। किसी बच्चे को आप देख लें, बिलफर्ज़ आप अपने बच्चों की अलमारियाँ ठीक कर रहे थे, आपको उसके अंदर कोई एक ऐसा मैगज़ीन दिख गया जो नहीं होना चाहिए था, क्या करेंगे? फाड़ के उसको बिन में फेंकेंगे, और वो आएगा तो फ़ौरन उसको सबके सामने रुसवा करेंगे और कहेंगे कि आज के बाद तुम्हारा पॉकेट मनी ख़त्म, तुम स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, ख़त्म हो जाएगी बुराई। देखिए कि एक जुमला मैंने अपनी ज़िंदगी में रखा है जिससे मुझे इस मौजू को समझने में बहुत ही मदद मिली कि तबलीग का मकसद बुराई को रोकना हो, ख़त्म हो जाए और ना फैल जाए। आप जब लोगों को इस तरह डायरेक्ट टॉन्ट करेंगे ना और जजमेंटल हो जाएंगे और सरे महफिल काम करेंगे, बस लोगों को देखा गया कि सरे महफिल लड़कियों के सरों पे, बच्चियों के जाके सर पे दुपट्टे दे देंगे, सर पे दुपट्टे लो, तो वो फिर क्या करती हैं कि वो गले में जो रखा था ना वो भी उठा के फेंक देती हैं, कहें जो हम गले में नहीं लेते। अब तो दुपट्टा वैसे ही ख़त्म हो गया, ये मसले ख़त्म हो गए बड़ों के, पहले ये बड़े इशू थे शादियों में, जब बुजुर्ग आते थे तो वो कहते थे दुपट्टे लो। अब आप इमेजिन करें ज़रा, देखिए कि बात लंबी हो जाती है जब हम छेड़ते हैं, लेकिन ज़रूरत है ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ों पर बात करने की। शादी का मौका है, लड़कियाँ पहनी ओढ़ी हैं, सर पे दुपट्टे नहीं हैं बिलफर्ज़, एक बुज़ुर्ग आए, ईमान भी है उनमें, जोश भी है, गैरत भी है, ऑफ कोर्स इंशाल्लाह उनके अंदर तकवा भी है, सभी कुछ होगा, या कोई औरत ही, मर्द नहीं, औरत की बात। आप उस वक्त आके सबके बीच में उस औरत को कहते सर पे दुपट्टा ले लो, ज़रा आप सोचें इस मैटर को, आप ज़रा एक डिफरेंट एंगल से देखें। पहली बात है कि क्या वो सर पे अगर दुपट्टा ले ही लेती है तो दैट्स ओके, फिर जो वहाँ लड़के मर्द मौजूद हैं उसका हुस्न देखें और वो सर पे पतला सा, और वो दुपट्टे भी छलनी की तरह के होते हैं, मकसद है क्या ये इसका है? दूसरी बात है कि फितरत है कि जब इंसान खुश होता है शादी पे, अच्छे मौके पे, उसका दिल चाहता है कि मैं रिलैक्स रहूँ। इसका हल तो ये नहीं था कि औरतों को अलग रखा जाए, मर्दों को अलग रखा जाए, आप क्यों आए औरतों में बिलफर्ज? हम इस मसले को दूसरी तरह हैंडल करने की बजाय इस तरह करते हैं। मिसाल है, ये तो ऐसे ही जैसे किसी को कहा जाए मिक्स गैदरिंग में बैठे हुए हो, बैठो एक ही टेबल पे, बस सर पे दुपट्टा लेके बैठो, हल नहीं है। आप सेटअप ही वो दें कि जिसमें किसी की फितरत के तकाजे भी पूरे हों और उसके ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम हो जाए। आप कभी अपने बच्चों में ऐसी कोई चीज़ देखें, झट से पकड़े उनका निकाह कर दें। मैं आपको सिर्फ 3 दिन देती हूँ, बस आपका या तो शादी होगी नहीं तो फिर ऐसी बात नहीं है। यानी ये मुख्तलिफ हालात मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मैटर्स को हिकमत से समझना चाहिए। एक औरत थी तो उसने अपने बच्चे की कहानी सुनाई, कहती कि मेरा बच्चा जो था ना उसने पता नहीं कहीं से घर में पड़े हुए पैसे उठा लिए, 100 का नोट या कुछ भी इस तरह के पैसे ले लिए, तो हाथ में पकड़े में अब छोटा सा बच्चा है, तो माँ को कहता है कि ड्राइवर को कहो कि मुझे साथ लेके जाए। कहा तुमने कहाँ जाना है? कहा मैंने आइसक्रीम लेनी है। कहा तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तो छोटा सा बच्चा ने कहा बस मेरे पास है, मैं नहीं बताऊंगा आपको, नहीं बताऊंगा आपको, नहीं बताऊंगा। कहती वो इतना क्रैंकी हो रहा था कि उसको आइसक्रीम लेनी है। खैर किसी तरह से भी वो वक्त टला, वो करी कि मैं पी गई, क्योंकि अगर इस वक्त मैं इसको कुछ कहूंगी इसको मेरी बात नहीं समझ आएगी। दिन गुजर गया, जब वो शाम को लेटा तो बच्चे को फिर माँ ने पूछा कि बेटा पैसे कहाँ से आए थे ना? तो उसने कहा बस वो मेरे थे, मैंने ले लिए, मैंने ले लिए। पता चला घर में ही कहीं ड्रॉ में या कहीं किसी के रखे हुए, तो उसने ले लिए। कहती फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा किसी की चीज़ तो नहीं लेते। और अब देखिए समझाने का खूबसूरत तरीका क्या है, बच्चों को बेस्ट थिंग है। अब नहीं कहा बेटा अगर तुम्हारी कोई ले ले, तुम्हारी पेंसिल ही कोई ले ले, तुम्हें कैसे लगेगा? तो बच्चा फौरन समझेगा, क्योंकि वो बस स्टिंजी होते हैं, बच्चे बहुत कंजूस होते हैं अपनी चीज़ों के बारे में। एक टॉफी लें तो उनके आंसू निकल आते हैं। आप बच्चे को ये बता देना कि तुमने किसी का 100 रुपये का नोट ले लिया है, तो वो उसको क्या गुजरा होगा, सोचो अगर तुम्हारा कोई ले ले। तो बस जब वो आइसक्रीम के नशे से निकल गया, उसको उस वक्त कहेंगे वो और रोएगा, और वो आप उसको थड़प से थप्पड़ मारे तुम चोर हो, चोरियां करते हो, मेरा बेटा हो, के कुछ फायदा नहीं होगा। इसके लिए सब्र बहुत करना पड़ता है। बात को दिल में रखें, किसी में कोई बुराई देख रहे हैं, आपको रुझान दिख रहे हैं, घर वालों के शौहर के रंग बदले हुए दिख रहे हैं, बच्चों के दिख रहे हैं, बीवियों के दिख रहे हैं, जरा सब्र करें, ऑब्जर्व करें, पहले मामले की हकीकत पे जाएं। और इसके लिए बहुत हौसला चाहिए, जब्त चाहिए, और खुद अपने ऊपर बंदे को चेक रखना पड़ता है। फिर आप सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लें कि सही हकीकत यही है, फिर प्रूफ जमा करें, और फिर जब बात करें उस वक्त करें जब अगला उस बात को झुठला ना सके। इधर उधर की गोलियां फेंक के आने से तो कोई बात नहीं बनती। तो बहरहाल इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला आगे भी बात करते जाएंगे, अल्लाह ने मौका दिया कोर्स पूरा हो आपका तो उसके बाद भी इस पे इंशाल्लाह एक्स्ट्रा भी आपके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो आपको ज़रूरत है अल्लाह से मांगने की, वो क्या है कि इस कुरान को हमारे दिलों पर इस तरह अल्लाह ताला उतार दे कि हम हिकमतों को समझ सकें। अल्लाह का कलाम हिकमतों से भरा हुआ है, अल्लाह के नबियों की इतनी कहानियां हमने कुरान पाक में पढ़ी, और हर नबी जो था आप देखिए कि बुरी बातों का जवाब अच्छी बातों से देता हुआ दिखा। सिर्फ आपको सूरत आराफ के हवाले लिखा दूं तो आप नोट कर सकते हैं कि नबियों को लोगों ने बेवकूफ़ भी कहा। सूरत आराफ में आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कौम ने कहा इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन। सोचें ज़रा मेरे सामने बैठ के कोई मुझे कहे कि मैं तो आपको खुल्लम खुला गुमराह देख रही हूँ, तो हम कहते हैं इधर आए अब जाते कहे, माइक तो मेरे ही हाथ में है ना, आपने तो मुझे कहा मैं तो सारे शहर को सुनाती हूँ। नहीं, उन्होंने जवाब में क्या कहा, या कौम लैसा बी दलालतुन, ए मेरी कौम मैं तो गुमराह नहीं हूँ, वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं तो रब का रसूल हूँ भेजा गया हूँ। ये सूरत आराफ की आयत 59 से 67 में हम पढ़ चुके हैं। फिर इसी तरह हर नबी की मिसाल मौजूद है, आप अगर पीछे आपको ही काम दे दूं तो आप खुद ही ढूंढ लें कि हर नबी को किसी को कौम ने बेवकूफ़ कहा, किसी को काजिब कहा, किसी को सफाहत में मुब्तला कहा, लेकिन हर एक ने उसका जवाब खूबसूरत तरीके से दिया। तो ऑफेंड नहीं होना, बस दफ़ा हम लोग चूँकि दूसरे की बात सुन के एकदम गुस्से में आ जाते हैं ना, तो फिर हम उसका ऑपोजिट तरीके से हल करते हैं। फिर अब देखिए कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जा रहे थे, ज़रा सोचिए फिरौन आज किसी को भी गलत काम करते देखें तो साथ ही टैली करें, ये बड़ा है कि फिरौन, इसका जुर्म बड़ा है कि फिरौन का, तो साथ ही ठंडे होंगे। अल्लाह सुबहाना तला ने मूसा और हारून को क्या कहा था, वकूला तुम दोनों कहना कौलन लयिनन, नरम बात करना, अंदर जाएगी बात फिर ही सुनेगा। हाँ, और जब ये गए तो उसने कहा कि तुम तो मजनू हो, इन्नकुम ला मजनून, मजनू लगते हैं तुम्हें। कहा नहीं, हाँ मैं मजनू नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। तो इसके लिए इंसान अपनी ज़ात के सहर से निकले, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम कहते हैं मेरे तंदर आग लग गई, ये जो आग लगी है ना तो ये इस बात की गमबाजी है कि आप खुद पसंद हैं। तारीफ के जवाब में खुश हो जाना और तनकीद के जवाब में बिफर पड़ना, ये खुद पसंद लोगों की अलामत होती है। आप गलत काम करते जाएं, लोग तारीफ करते जाएं, आप खुश हैं, समझ लें कि आप बिल्कुल ही इस तरह की बातें करने वाले हैं। एक दो कोटेशन आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। इमाम गजाली कहते हैं कि जिस तरह शराब उम्मुल खबाइस है, کہ خود بھی بڑا گناہ ہے اور دوسرے بڑے بڑے جسمانی گناہوں کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح بحث مباحثے میں جب مقصود یعنی بحث صرف اس مقصد سے کی جائے کہ مخاطب پر غلبہ پایا جائے اور اپنی علمیت کو ظاہر کیا جائے، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھا جائے، تو وہ بھی باطن کے لیے ام الخبائث ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے روحانی جرائم پیدا ہوتے ہیں، مثلا حسد، بغض، تکبر، غیبت اور دوسرے کے عیبوں کا تجسس، اس کی برائی سے خوش اور بھلائی سے رنجیدہ ہونا، قبول حق سے تکبر کرنا اور دوسرے کے قول پر انصاف اور اعتدال کے ساتھ غور کرنے کی بجائے جواب دہی کی فکر، خواہ اس میں قرآن و سنت میں کیسی ہی تاویلات کرنا پڑے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ جیسے شراب بندے کو ڈستی ہے نا، تو غلط قسم کے بحث کرنے، مباحثے کرنے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم تو اہل علم و فضل کے مابین ایک رحم متصل رشتہ ہے، یعنی ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے علم ہی کو دعوت بنا لیا، وہ دوسروں کو اپنے مذہب کی اقتداء کی دعوت کس طرح دیتے ہیں؟ یعنی جو دین والے ہی لڑ رہے ہوں گے، وہ دوسروں کو دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ ان کے پیش نظر دوسرے پر غلبہ پانا ہی ہے، تو پھر ان سے باہمی انس اور مودت اور مروت کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر شر اور برائی اور کیا ہوگی کہ وہ اس کو منافقین کے اخلاق میں مبتلا کر دے اور مومنین اور متقین کے اخلاق سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ینفع اللہ بعلمہ، سب سے زیادہ عذاب میں وہ عالم گرفتار ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہ بخشا ہو۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ مجھے وہ علم دے جس سے نفع ملے، تو وہ علم جس سے نفع نہ ملے وہ تو انسان کے لیے اور ہی تکلیف ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ علم دین کو اس غرض سے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعے دوسرے علماء کے مقابلے میں فخر اور عزت حاصل کرو، یا کم علم لوگوں سے جھگڑا کرو، یا اس کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لو، یعنی بڑا بن کے دکھاؤ لوگوں کو، اور جو ایسا کرے گا وہ آگ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم میں جھگڑا اور جدال نور علم کو انسان کے قلب سے نکال دیتا ہے، یعنی جہاں علم کے ساتھ جھگڑے آ جاتے ہیں نا، نور نکل جاتا ہے دل سے علم کا۔ کسی نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کو سنت کا علم ہو، کیا وہ حفاظت سنت کے لیے جدال کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ مخاطب کو صحیح بات سے آگاہ کر دے، پھر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، بہتر، ورنہ سکوت اختیار کرے، خاموشی رکھے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اب پتہ چل گیا تو اب دوسرے کو تو بتانا ضروری ہوگا۔ تو بہرحال اس پہ بہت ساری اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے لیے میرا خیال ہے کہ وقت کے لحاظ سے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی آیت میں کچھ مزید بات ہے جو تھوڑی سی اس سے ملتی جلتی بھی اور تھوڑا اس میں ایک مختلف انداز بھی ہے۔ آیت 126 کو دیکھیں گے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم انہیں سزا دینا چاہو تو ان کو سزا دو، لیکن اس قدر جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم ان کی ستم رانیوں پر صبر کرو تو یہ صبر ہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور صبر کرنا مشکل لگے تو وَصْبِرْ، صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر تو اللہ کی توفیق ہی سے ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور رنجیدہ نہ ہو ان کی ہٹ دھرمی پر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ دل میں گھٹن محسوس نہ کریں اس بات پر جو یہ مکر کر رہے ہیں۔ اور آخری آیت بھی اسی کے ساتھ ہے، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ ان تین آیتوں میں بنیادی طور پہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اس کی بھی مختلف تفاسیر کی گئیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ جن لوگوں نے اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے، مسلمانوں کو تکلیف دی، ستایا، تو اب ہم بھی ان سے بدلہ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ دیکھیے، آپ بدلہ لینا چاہیں تو لے لیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ بدلہ نہ لیں، کیونکہ بعض دفعہ بدلہ لینے میں زیادتی کرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ یہاں لفظ آپ نے دیکھا، عوقبتم اور عاقبوا اور عاقبتم، یہ تینوں ایک ہی لفظ ہیں، عین قاف با اس کا روٹ ہے۔ अकीबा कहते हैं पीछे हिस्से को, ये जो एड़ियां होती है ना हमारी हील्स, उसको कहते हैं अकीबा। पीछे भी पढ़ चुके वजू के सिमत में। अकूबत कहते हैं वो सजा जो किसी जुर्म के पीछे आए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यहाँ एक बड़ा खूबसूरत असूल दिया कि अगर तुम्हारी दावत और तबलीग के नतीजे में कोई बंदा हिदायत नहीं पाता तो तुम फिर उसके साथ बदले लेने वाले ना बन जाओ। इस आयत की शान नज़ूल की रिवायत मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। ग़ज़वे उहद में जब मुशरिकीन लौट गए तो सहाबा कराम में से 70 बड़े बड़े सहाबा की लाशें सामने आईं, जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा भी थे। मुशरिकीन को इन पर बड़ा गज़ब था, गैस था, इसलिए उन्होंने इनको कत्ल करने के बाद इनकी लाश पर अपना गुस्सा इस तरह निकाला कि इनकी नाक, कान और दूसरे अज़ा काट दिए, पेट चाक किया गया। अल्लाह के नबी को इस मंज़र से सख्त सदमा पहुँचा और आपने फरमाया कि मैं हमज़ा के बदले में मुशरिकीन के 70 आदमियों का ऐसा ही मुसला करूँगा। इससे आप महसूस कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी को चोट कितनी गहरी पड़ी थी, तकलीफ हुई। कहा मैं 70 को पकड़ूँगा क्योंकि उन्होंने हमज़ा के साथ किया है। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में ये 3 आयतें नाजिल कर दी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मान लिया कि आपको गम है, मान लिया कि आपके चचा भी हैं, आपके दूध शरीक भाई भी हैं, आपको उनसे बड़ी मोहब्बत भी थी, लेकिन आप वैन आकब तुम फाकिबू बिमिस्ली मा उकिब तुम भी, जितना किसी ने नुकसान दिया है आप भी उतना ही दे दें, यानी एक के बदले में 70 क्यों। अच्छा, इसके बरक्स आज हमारा एक बोला बस जुमला ज़रा लिखें कि ईंट के जवाब में पत्थर, हाँ, एक के बदले में 100 सुनाओ, ये कौन सा अखलाक है। बिमिस्ली मा उकिब तुम वाला के दूसरा, यानी अगर बदला लेना भी है तो बराबरी का ले लो, इजाज़त है। हम छठे पारे की पहली आयत में भी पढ़ चुके कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सू इल्ला मन ज़ुलिम, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात बता दी कि बराबर लो, लेकिन वला इन सबर तुम सबर ही कर लो तो लहू व खैरुल लिस्साबरीन, वो तो सबर करने वालों के लिए बेहतर है, रुख्सत मौजूद है, लेकिन असल मतलूब किरदार यही है कि सबर करो। सूरत शूरा आयत 40 में भी यही बात आती है, सूरत मायदा 45 में भी यही बात आती है। आप देखिए कि बस दफ़ा हम सब्र कर नहीं पाते, और आप देखेंगे कि जहाँ दावत और तबलीग की बात आएगी ना कुरान पाक में, उसके साथ फ़ौरन सब्र की बात आएगी। मसलन वलसर इन्नल इंसान लफी खुसर, ज़माने की कसम इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती, ये दो बातें तो कॉमन है कि जो ईमान ला के अमल सालेह करें और वतवासो बिलहक़ी, तवासी बिलहक करें, एक दूसरे को हक बात की दावत देना, साथ ही कहा वतवासो बिस्सब्र, फिर वो सब्र करें। इसी तरह सूरत आले इमरान की आखिरी आयत में भी हमने देखा था कि अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह की तरफ बुलाना या लोगों को उनकी बुराइयों पर टोकना, ये भीड़ों के छज्जे में हाथ डालना है। लोग आराम से थोड़ी बैठेंगे, चीखेंगे। आप देखें कि किसी की चीज़ आप उससे छीने तो उसको गुस्सा आता है ना, तो लोगों को तो बुराइयाँ बड़ी प्यारी होती हैं, उनकी मनपसंद चीज़ें आप उनसे छीनेंगे वो चीखेंगे, तो उस चीखो पुकार के मुकाबले में आप भी रिएक्शन शो करने की बजाय सब्र करें तो बेहतर होगा, और इस रास्ते में बंदा वाकई छोटा बन जाता है। बाज़ दफ़ा लोग लोगों की नज़रों में छोटा ना बनने की वजह से ये काम नहीं करते, कहते नहीं फिर लोग हमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, ये होगा होगा, तो एक अल्लाह के लिए जीता है, एक बंदों के लिए जीता है। फ़र्क दोनों में यही होता है कि एक की निगाहें लोगों में अटकी होती हैं, वो क्या कहेंगे, वो मुझसे खुश हैं, वो मेरी कदर करेंगे कि नहीं, और दूसरा कहता है अल्लाह तू बता तुझे क्या पसंद है, तुझे क्या नहीं पसंद। कह दे कोई मुझे छोटा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हैं कौन जो कहने वाले, वो भी तो छोटे ही हैं ना, वो बड़ी ज़ात ना मुझे छोटा के, अल्लाह अकबर छोटा ना के। जो अल्लाह की नज़रों में जचना चाहता है ना, वो कभी असूलों पे समझौतेबाजी नहीं करता। सूरह शूरा आयत 43 में भी आता है वला मन सबर व गफर फ़इन्न ज़ालिका मिन असमिल उमूर, और अलबत्ता जो सबर करे और उसने बख्श दिया, बेशक ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है, और ये वही कर सकता है बस बिर बमा सब्र का इल्ला बिल्ला, कि जिसको अल्लाह के अजर का यकीन होगा। हज़रत हुज़ैफ़ा के नाते से एक रिवायत हम तक पहुँची है, कहते हैं कि ऐ लोगो, बेसोचे समझे लोगों की पैरवी ना करो कि जैसा मामला वो करेंगे मैं भी वैसा ही करूँगा, बल्कि इस बात के खूगर हो जाओ कि लोग बुरा भी करें तो मैं अच्छा करूँगा। हमारे यहाँ क्या मारूफ जुमले हैं ख़ानदानी निज़ाम में, जो जैसा करेगा फिर वैसा करना, हाँ, वो एक सुनाएगा, तुम दो सुना देना। तो हमें अपने रवैयों को दूसरों के ताबे नहीं करना चाहिए, असूलों पे जीना सीखें, अपने असूल बनाएं, फिर कभी ना पीछे हटें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सरवैया कि कैसे बाप की ज्यादतियाँ, बाप कह रहे हैं मैं तुझे रजम कर दूंगा, और ये कह रहे हैं सअस्तग़फिरुलका रब्बी, मैं तेरे लिए अपने रब से बख्शिश मांगूंगा। कौमे लूत के बारे में झगड़ रहे हैं, तो दीन का काम हो ही नहीं सकता सब्र के बगैर। इसलिए कहा कि तुम अगर दीन फैलाना चाहते हो सबसे पहले साबिर हो जाओ। पहले उस्ताद को सब्र करना पड़ता है, फिर शागिर्द सब्र करते हैं। पहले माँ सब्र करेगी, फिर बच्चे सब्र वाले बनेंगे। इसी तरह पहले लीडर्स में सब्र आएगा तो फिर फॉलोअर्स में सब्र आएगा। पहले दीनी रहनुमाओं में सब्र आएगा, फिर आएगा आमतुन्नास में सब्र। आप किस सब्र का मुजाहरा करें? आप तो दूसरे मसलक के ख़िलाफ़ या दूसरी जमात के बंदे के ख़िलाफ़ तो बात ही नहीं बर्दाश्त कर सके। तो वो 40-100 लोग जो बैठे होते हैं आपको देखते, वो नहीं समझ रहे कि मौलवी साहब को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इस कंता जी गुस्से पे काबू ही नहीं पा रहे, और इनकी ज़ुबान से जो बातें निकल रही हैं, इसका अंदर कि हमें भी जायज़ है कि हम भी किसी के गुस्से में दो चार बातें कर लें। जो दीन के नाम पे किसी को गालियां देगा, क्या फिर वो दुनिया के नाम पे गालियां दूसरों को देने की इजाज़त नहीं दे रहा? तो अल्लाह ताला यही बता रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो वो पूरी बात पूरी होती है। सबसे पहले क्या कहा? हिकमत से बुलाओ, फिर मौइज़ा हसना करो, नसीहत अली बात करो, फिर इख्तलाफ अगर हो जाए कभी कभी तो फिर जादिल हम बिल्लती या अहसन। फिर उसके बाद कहा अच्छा बदला लेना है थोड़ा सा ले लो, अच्छा नहीं लेना चाहते सब्र ही कर लो तो बेहतर है, कि सब्र करके दिल में गम तो इस है तो वला तहसन अलैहिम, फिर गम भी ना करो, क्योंकि सीना घुट जाएगा तो काम कैसे करोगे। वला तकफी दई के मिम्मा यम करून, और तुम्हारे खिलाफ जो चालें चलेंगे उस पे तुम फिकर ना करो, क्योंकि इन्नल्लाह मा लजीन तकव। किस पे तान टूटी? अल्लजीन तकव, तकवा इख्तियार करो, तुम अल्लाह से डरो, और वल्लज़ीन हुम मुहसिनून, मुहसिन बनो, हुसन के साथ काम करो, तबलीग करो तो हुसन से करो, दावत दो तो हुसन के साथ दो, दूसरों पे एहसान करो, उनको ताने ना दो, तशनी ना करो, इल्ज़ाम ना दो, उन पे ऐसी बातें ना करो। फिर पता चलेगा आपको कि किस तरीके से ये सारा काम होता है। आज आपको मालूम है, यानी यही बात पढ़ते हुए मेरे दिल में एक और चीज़ आ गई कि क्रिश्चियनिटी के आज कसरत से फैलने की जो बड़ी वजह, मेरे पास एक रिपोर्ट थी उसी की बेस पे आपसे बात कर रही हूँ। खुलासा क्या है बात का? कि इस्लाम जो फैला ना वो दलाइल के साथ फैला। आज भी मुसलमानों के पास इस्लाम इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, एक बिग वेपन है, कि जिसको इस्तेमाल करके आप दुश्मनों को अपनी तरफ बुला सकते हैं। इसके बरक्स क्रिश्चियनिटी, बुद्धास और दूसरे जो मज़हब है ना, इनके पास मधु के चंद सवालों का भी जवाब नहीं होता। सिर्फ यही पूछ लेना ट्रिनिटी क्या है तो उनको हाथ पांव पड़ जाते हैं। वो कहते हैं वो जैसे एक अंडा होता है ना, देखो एक है ना अंडा, लेकिन उसका एक बाहर छिलका है, फिर दूसरा उसमें वाइट है सफ़ेदी, और अंदर देखो पीली चीज़ है तीसरी। तो देखो ये एक में तीन हो गए ना, तो खुदा भी एक में तीन है। ये मैंने खुद सुनी एक स्पीच में किसी की मिसाल, तीन में एक होता क्यों नहीं होता, अंडा भी तो तीन में एक ही है ना। हाँ, और वो देखो ना एक औरत है ना, तुम उसको क्या कहते हो? ग्रैंड माँ। अच्छा जी, तुम उसको दादी कहते हो। तुम्हारा अब्बू क्या कहता है? वो उसको माम कहता है। तो कहा तुम्हारा दादा उसको क्या कहा? वो उसको बेगम कहता है, वाइफ कहता है। कहा देखा तीन में एक हो गया, यकीन कर इस तरह की बातें। एक स्पीकर है, इंग्लिश स्पीकर है, यूसुफ एस्टी उनका नाम है। तो ये पहले क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, इनकी आज भी तबलीग में वही अंदाज है, यानी अल्लाह ने उनकी वही स्किल्स इस्लाम के लिए इस्तेमाल की। तो वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि इस तरह हम लोगों को क्रिश्चियनिटी सिखाते थे कि देखो, और लोगों को समझ ही नहीं आती बात, वो सुन के चले जाते हैं, यानी किसी के पास कोई दलाइल नहीं। लेकिन इस वक्त भी क्रिश्चियनिटी अगर फैल रही है ना, तो वो उनके अखलाक पे फैल रही है। चंद दिन पहले मुझे यहीं गालिबन किसी ने बताया कि ये कोई जो बस गुजर रही है ये किसी चर्च वालों की है, और वो शहर के गरीब और नशई और भूखे नंगे लोगों को जमा करते हैं, फिर सड़क के किनारे एक छोटा सा खेमा लगाते हैं, फिर उसमें खूब खाने पीने की अच्छी चीज़ें रखे, तो ऐसे गरीब जो छोटे छोटे ऐसे लोग होते हैं उनको खिलाते पिलाते हैं, मुफ्त दूध पिलाओ और ये करो, तो वो तो हमेशा के लिए उसके हो गए। देखिए किसी बीमार को आप दवा दे दें वो ठीक हो जाए तो वो तो आपका हो गया। यानी इखलाक के साथ वो अपना दीन फैला रहे हैं, और हम अपनी बदनज़मी और हिकमत की कमी की वजह से इतने खूबसूरत इस्लाम से दूसरे को ले जाते हैं। फिर जहन में ये भी रखे कि हर एक के दीन पे आने के तरीके फ़र्क हैं। कोई पेट के रास्ते दीन पे आएगा, उसको अच्छे खाने खिलाएं। आज वेस्ट में ये चीज़ बड़ी मारूफ हो गई है। एक कन्वर्टर है, कहते हैं मैं तो मुसलमानों की बिरयानी खा के मुसलमान हुआ। एक है वो कहते हैं कि मैं कहीं गया तो उन्होंने पुलाव पकाया हुआ था, तो पुलाव खा के और उसकी खुशबू सूंघ के मैंने कहा कि वो दीन कितना खूबसूरत होगा जिसका खाना इतना खूबसूरत है, इतना टेस्टी है, और उसके साथ वो मुसलमान हो गया। तो इंसान को ख्वाहिश रखनी चाहिए कि मैं लोगों की मेंटालिटी को समझ के बात करूं, खूबसूरत चीज़ों को दीन में लाएं, ऐसा अंदाज़ हो कि लोगों का दिल खुले, अपनी सारी जीनत, अपनी खूबसूरती, अपने घर की खूबसूरत चीज़ों को इस्लाम के लिए लाएं, अपने खूबसूरत घरों को इस्लाम के लिए खोलें। लोग मस्जिदों में आके नहीं बैठना चाहते, उनको कंफर्टेबल सोफे अच्छे लगते हैं, खोल दें, क्या होगा, कितने को गंदे होंगे, कितने को घिसेंगे। जिसको जो चीज़ हो ना, उसको उस पर काम करें। आप सिर्फ अपने नेबर्स को रोज़ कोई थोड़ी सी चीज़ पका के भेजनी शुरू कर दें, वो कहेंगे पता नहीं इन्होंने हम पे जादू कर दिया। लेकिन आजकल जो हमारे देसी खाने होते हैं सर्दियों में, आप उनको बना के भेजें ज़रा कोई ऐसी मिर्चों वाली चीज़, वो शौक से खा जाएंगे, ऐसा ऐसा वो आपके करीब हो जाएंगे। टारगेट करें, जिसको भी अपने दीन की दावत देनी है उसको पहले टारगेट करें। शुरू में कोई एक हफ्ता दो हफ्ता सिर्फ जाते आते स्माइल करें, पहले दिन जाके कहिए जी फ्लायर लाई हूँ इस्लाम का, पढ़ लें प्लीज़ प्लीज़, मुसलमान हो जाएंगे तो मुझे बताइएगा, मैं लड्डू लेके आऊँगी। ऐसे दीन नहीं आता। ब्रोशर बांटें, कैसेटें बांटें, बहुत ज़ाया होती हैं, लेकिन एक भी काम में आ जाए तो माशाल्लाह काम आती है। लेकिन सबसे बेस्ट थिंग जो है ना, वो हमारा अपना एटीट्यूड है। अपनी बर्फ़ उठाते हैं ना, एक दिन निकले अपने नेबर की भी उठा दे, वो हैरान हो जाए मेरी बर्फ़ किधर गई, आप कहना वो मैंने अपने साथ उठा दी। यकीन करें आपने उसके आधे दिल के अंदर एक छोटी सी जगह बना ली अपनी। भाई तुमने क्यों किया, कहना असल में हमारा इस्लाम कहता है कि नेबर्स के हक रखो। कितने लोग हैं हम में से, मेरे समेत, जिसने कभी ये ट्राई की हो चीज़, अपने पत्ते उठा रहे हैं तो नेबर्स को भी उठा दें। कोई उनके बच्चे हैं तो उन्हें कहें लाए मैं आपके बच्चे को संभाल लूँगा, मैं संभाल लूँगी, मैं अपने घर में रख लूँगी, कोई बात नहीं, कभी आप देर से आएँ, कुछ खाना चाहिए हो तो मैं आपके लिए बना दूँगी। करें, यकीन करें, ये वो चीज़ है जिसे लोग घरों को भी और करीब और दूसरों को भी आप इंशाल्लाह करेंगे। यानी अकल को कायल करने से पहले दिल को माइल कराएं। हम माइल करने के बजाय कायल करने में रहते हैं, फिर कहते हैं इतनी हदीसें सुनाई थी फिर भी नहीं मानी। हाँ नहीं, आप ना ऐसा करें। और इसी तरह फिर जाहिलों के साथ जाहिल नहीं बनना। बहस का मौका है, गुस्सा नहीं करना, दलाइल देते हुए बात नरम अंदाज में करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। एक मजमून है मेरे पास अलामा शिबली नोमानी का, कहते हैं नदवतुल उलमा क्या कर रहा है, यानी उनका एक सवाल है। एक बहुत मारूफ जगह है जहाँ से इल्म सीखते हैं लोग, मदरसा है लखनऊ में। तो कहते हैं कि नदवतुल उलमा क्या कर रहा है लखनऊ में। कहते हैं कि जिस ज़माने में रूसी कौम बुत परस्त थी, तो मिलादी मीर ने एक जलसा मुकर्रर किया, मुसलमानों को भी बुलाया। कास्किस्तान से आने वाले आलिम ने सिर्फ सुअर के गोश्त खाने का मसला पेश किया। ओके, रूसी शहनशाह मज़हब इस्लाम की तरफ माइल था, लेकिन गुस्से में इस आलम को दरबार से निकाला और ईसाइत कबूल कर ली। क्या नतीजा निकला, 6 करोड़ अवाम भी ईसाइत की तरफ चले गए। कोई ज़रूरत थी उस दिन सुअर के गोश्त की बात करने की, ये होती है गैर हकीमाना तबलीग। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी इस्लाह करने वाला बना दे। यहाँ पे सूरत भी पूरी हुई और मौजू तो सच्ची बात है पूरा नहीं हुआ, मैंने तो अभी बहुत सारी चीज़ों को टच नहीं किया, ये सोच कर के जितनी चीज़ें आई हैं उसी को ही अगर हम जज्ब कर लें, अपने अमल में ले आएँ तो बेहतर होंगी। बस एक आखिरी मिसाल जहन में आ गई कि चावल पकाते हुए भी अगर थोड़ा सा रेशो फ़र्क कर देना तो चावल की बजाय कुछ और पक जाता है, पानी कम, नमक तेज़, कुछ और कर दें या ज़्यादा कर दें, तो तबलीग भी जो ना ये रेशियो और प्रोपोर्शन का नाम है। कब कितना, कितनी आवाज़ से बोलना है, ऊंचा करना है, कब कहना है। कई दफ़ा आप एक जुमला बोलना होता है अपने, पूरा दर सब सब्र करते हैं अभी नहीं, क्योंकि आपको होता है कि ये आखिर में बोल के जाऊँगी ना तो बाद में सोचेंगे। इसमें इंशाल्लाह अलग कभी मौका मिला तो बात करेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल है आपके जहन में? जी देखिए कि आपका सवाल के अंदर जो लुबे लुबाब मुझे दिखा है वो ये है कि किस हद तक नॉन मुस्लिम्स को या बिगड़े हुए मुसलमानों को इस्लाम या नबी सल्लम की मुखालफत और उनके फ़न करने पे माफ़ किया जा सके, ये सवाल है ना आपका। देखिए पहली बात तो ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मुकल्लफ नहीं बनाया। एक छोटा सा सूल समझ लें, अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें ये नहीं कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम आया कि नहीं आया, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम में से हर बंदा अपनी जगह अपने रिसोर्सेज के साथ जवाब दे। मसलन बड़ी आसान और आम हदीस है कि कुल्लुकुम रायुन, तुम में से हर एक राई है अपने घर में, बच्चों पे, घर वालों पे, इस तरीके से। फिर शोहर का मुकाम और तरफ है, बीवी का कहीं और है, ठीक है। अब हम अपने घर की हद तक जवाब दें, हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं, मिसाल है कि बच्चे आपके, आप अपने बच्चों के दीन की बिल्कुल आप जवाब दे होंगी। मिसाल है कि कोई शख्स कहीं पे कोई काम करता है, उसके अंडर 50 एम्प्लॉयज रहते हैं और वो एम्प्लॉयज़ उसके साथ दिन में 5-6 घंटे गुजारते हैं। उसका फ़र्ज़ बनता है कि उस वक्त के दौरान जितनी नमाजें आएँ उसके लिए इख्तमाम करें, प्लस आहिस्ता आहिस्ता उन 5 में से कोई 15-20 मिनट बना के उनकी तरबियत दीन की भी करें। ये तो हो गई बातें हमारे आम तौर पे, छोटी छोटी बातें। इसके बरक्स वर्ल्ड लेवल पे, कंट्री लेवल पे क्या हो रहा है, हम मुकल्लफ नहीं है। फर्स्ट थिंग ये याद रखें, जब तक कोई आपको पूछता नहीं है आपके ऊपर कोई जवाब नहीं है। मसलन जैसे मैं आपके इस वक्त पढ़ा ही रही हूँ, कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जब आप पूछेंगे नहीं तो मैं, तो मुझे बताने का कोई गुनाह नहीं है, मुझे कोई नहीं कहेगा कि आपने इल्म छुपाया है। हाँ, अगर आप कोई सवाल पूछ लेते हैं मुझसे तो मुझे बताना पड़ता है ना। अब दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, एक चीज़ को तो हम बहुत फैला लेते हैं जज्बात में आके कि ये कर दो, रिएक्शन में वो कर दो, दूसरी तरफ हम ये नहीं सोचते कि क्या हमारे इख्तियार में वो है, क्या हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे। मसलन आप देखिए ना कि बाहर आप ट्रैफिक पुलिस को कहें कि आप जाएं खाना खाएं तो मैं थोड़ी देर इधर इशारे कंट्रोल करता हूँ, नहीं करने देगा ना। हम कह सकते हैं नॉर्वे का हुकूमत को कि ये मैंने कुछ कवानीन बनाए हैं तो ये ज़रा आप अपने बुक ऑफ लॉ में लिख लें। चलिए उनको छोड़ें, हमें ही कह दें आप इधर आए, आप आते हैं आप कहें कि जी ये प्लीज़ मैंने एक रूल्स का पेपर बनाया है, आप यहाँ अपने ऐड कर लें, नहीं करने देता ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तो हम पे बोझ डाला ही नहीं है। असल चीज़ ये कि चीज़ ठीक कब होगी, जब आप उसका रूट देखेंगे ना। नॉन मुस्लिम इस्लाम का मजाक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक क्यों उड़ाते हैं, इसकी रीज़न क्या है, पीछे चलें, इसको छोड़ें, पीछे जाएं। इसने उड़ाया, तासुब था दिल में, हसद था दिल में, ला इल्म था, इसको पता ही नहीं अल्लाह का नबी कौन है। अच्छा चलो कुछ मैं करती हूँ इसके लिए, मिसाल है मुझे करना है, मैं क्या करूँ, एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखूँ। जब भी कोई बंदा किसी रंग में, मिसाल है कि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ लिखता है, ये इस्लाम के खिलाफ, उसका बेस्ट जवाब बींग उम्मत नेशन हम सब दे सकते हैं। कैसे, उसी के जवाब में अपने इल्म के मुताबिक या रिसर्च करके आप एक अच्छा आर्टिकल बनाएं, किसी भी तरीके से वहां पहुंचा दें ताकि वो उसको पता चल जाए। इस वक्त जो मुसलमानों के सारे प्रॉब्लम्स का हल ये है, वो कहे कि आप अपने इस्लाम को इतना आम करें कि पहले आप खुद मुसलमानों को समझ आए, फिर मुसलमानों के एटीट्यूड, उनके बिहेवियर इतने खूबसूरत हों कि लोग उनको देख के समझ आए कि इस्लाम ऐसा होता है, फिर नॉन मुस्लिम तक जाएगी बात, वरना बात नहीं बनेगी। ऊपर से आप लेप करते रहे लेकिन अंदर से जरासीम बीमारी के दूर नहीं करेंगे, आज आप किसी के मुकाबला ख़त्म करेंगे कल दूसरे मुल्क से कोई शुरू कर देगा। तो अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं किया, तो रूट कॉज पे चले, अपना अमल करें। मसलन है कि अगर आप देखिए कि आप इस्लाम की इस वक्त तालीम हासिल कर रही हैं, कुरान सीख रही हैं ना, साथ ही नीयत करें कि अल्लाह ये असल में गलबा इस्लाम की तरफ पहला स्टेप है। हम इस वक्त लोगों को अल्लाह के नबी के खिलाफ कार्टून लिखने से रोकने के लिए ये कुरान सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल में पढ़ते हुए अल्लाह के नबी की मोहब्बत आ रही है, हमें आपकी सुन्नतें पता चल रही हैं, आपका तरीका पता चल रहा है। तो टकराव की बजाय अवॉइड करें। किसी ने मुझसे सवाल किया कि मैंने देखा किसी को कि कोई वहां पैसे लेके अपनी जेब में डाल रहा था। मिसाल देती हूँ आपको, कभी आप भी देख सकते हैं, आपने देखा आपने कोई चीज खरीदी है दुकान पे जाके फलां भाई साहब से, और आपने देखा कि वो मुलाजिम जो होता है वो पैसे उसने गले में डालने की बजाय जेब में डाल दिए, अब क्या करें। अब ये सवाल उठता है, हम कहते हैं बस देखा। अब यहाँ पे वो फिर वाकई जब बंदे के अंदर एक दीन की सोच होती है तो वो कहता है ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं अब ऐसा करती हूँ कि ज़रा बाहर जाऊँगी या जब मेरी मुलाकात होगी तो मैं मालिक को कह दूंगी कि देखें जी आपके एम्प्लॉई ने कुछ चोरी शोरी की है, आप क्या करेंगे। आप जवाब दें ज़रा, आपको भी देखती हूँ कि आप क्या करेंगे। आप किसी को देखें कि अपनी जेब में पैसे डालते देखें। शम्मा जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास। हफ्सा हाँ, आप उसे मना करेंगी जी। ताहिरा आप क्या करेंगी, आप उसको पकड़ेंगी जी। रेशम आप क्या करेंगे जी, आप क्यों सोच रहे हैं कि वो चोरी कर रहे हैं। हदीस में आता है कि मोमिन कभी दूसरे के लिए बदगुमान नहीं होता, देखिए, दो लफ्ज़ों की नबी सल्लम की एक हदीस है कि नजा मन समत, निजात पा गया जो चुप रहा। हमारी जबान में कहते हैं ना, एक चुप सौ सुख। हाँ, आप क्यों बदगुमान है? हाँ, अगर आपका दिल अंदर कह रहा है ना कि आपने इसको एक से दो बार देखा है, तो आप पहले क्या तरीका कर सकते हैं? पहले तो आप फौरन कहें कि नहीं, तौबा अस्तगफार, कितनी बुरी हूं मैं कि मैं एक मुसलमान के लिए ये सोच रही हूँ चोरी कर रहा है। हो सकता है उसके मालिक ने कहा हो कि तुम अपनी जेब में डाल लो और फिर उसको बाद में दे दे, और हु केयर्स, इट्स नॉट माई बिजनेस। हाँ, फिर आप देखें कि आप इसकी तावीलें करें। एक रिवायत, एक कॉल है, मैंने शायद पता नहीं आपको कहीं सुनाया कि नहीं, कि तुम किसी मुसलमान को गलत काम करते भी देखो तो उसके ऑपोजिट 99 उधर ढूंढो, नहीं ये वजह होगी, नहीं ये होगी, नहीं ये होगी, 99 लिखो और फिर आखिर में एक उधर रख लो कि मेरा ख्याल है कि मैं उस वजह को ही नहीं समझ सका जिस वजह से इसने ये काम किया, इसलिए इसको छोड़ दो। 100 उजर पूरे करो। ये इस्लाम चाहता है मुसलमान को मुसलमान के लिए। क्यों बुरा रखे? हाँ, आप अपने तरफ पे वैसी तबलीग करें, आप कोई अच्छी कैसेट, कोई सीडी, कोई बुक, कोई टॉपिक उसको दे सकते हैं आगे पीछे। हम हिट तब करते हैं जब किसी को देख रहे होते हैं। आप नजर में रख लें कि अच्छा, शायद इसमें मैं इसको अक्सर ही इस तरह देखती हूँ, तो कोई बात नहीं। अगर आप कर सकें तो उस बंदे तक किसी ना किसी तरह से मैसेज भेज दें। ठीक है,
यहाँ पे तिलावत सुनते हैं।
ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين